श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री कृष्णा बलराम की, श्री बरसानाथ धाम की, श्री नंदगांव धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीला प्रभुपाद की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। पानी हरे कृष्णा। सो इस कैंप का ये आखिरी दिन है और श्रीमती राधा रानी की असीम कृपा से हम सब लोग यहाँ विराजमान हैं। उनकी असीम कृपा है इसलिए श्री राधा रानी हमें यह सेवा देती है। तो ये जो लाडली लाल का विग्रह है, आप लोग दर्शन किए कि नहीं गए? कितने लोगों ने किए दर्शन? कितने लोगों के बाकी है? सब विद्यार्थियों के दर्शन हो गए? आप राधा रानी के दर्शन हो गए? ये जो ब्रज भूमि है, ये ब्रज भूमि कृष्ण के जाने के बाद में एक प्रकार से लुप्त तो हो गई थी। कृष्ण के अंतर्धान होने के पश्चात ब्रजभूमि सोनी सुनी हो गई थी। ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि जो ब्रजवासी उस समय थे उन सबको भगवान दंत वक्र को मारने के हेतु गौलोक धाम ले गए। फिर भी कुछ लोग थे वो भी छोड़ के चले गए। वो कृष्ण के बिना ब्रज में रहना उनके लिए बहुत कठिन था। तो कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद में उनकी पत्नियां जो हैं वो बहुत व्याकुल हो गई और भगवान ये सब जानते थे कि सब ऐसा होने वाला है, इसलिए उन्होंने उनके प्रपौत्र पांडवों के प्रपौत्र वज्रनाभ और नहीं कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ और पांडवों के प्रपौत्र परीक्षित महाराज, इन लोगों को आदेश दिया था कि आप दोनों मेरे पत्नियों को लेकर श्री वृंदावन में लेके आना, उनको यहीं से उनका उद्धार होगा। और वज्रनाभ को बताया था कि आप परीक्षित महाराज के नेतृत्व में ब्रज के राजा बनेंगे। ब्रज के राजा बनेंगे और ब्रज को संवारेंगे, ये सही शब्द है। ब्रज का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता है, ब्रज कभी जीर्ण होता ही नहीं तो उसको जीर्णोद्धार कैसे होगा? लेकिन वो नज़रों से ओझल हो जाता है, फिर प्रकट होता है, उसको संवारा जाता है। तो वज्रनाभ जी ने भगवान के आदेश के अनुसार तीन स्तर पर ब्रज को संवारा। एक है वन, वनों को संवारा, जहाँ भगवान की जो मेन लीला है वो कुछ कुछ मंदिरों में है, लेकिन मेजॉरिटी बहुतेक लीला जो है वो सब वनों में है, ओपन फील्ड में है, ब्रज भूमि के अंदर है। तो वनों को संवारा उन्होंने। आज मंदिरों को संवारा जाता है और कभी कभी कुंडों को संवारा जाता है, लेकिन वनों को संवारने का प्रोजेक्ट किसी ने लिया नहीं है अभी। सबसे पहले वज्रनाभ महाराज ने किया। वज्रनाभ जी महाराज प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, उसके पुत्र वज्रनाभ थे। प्रद्युम्न कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र थे। दूसरे स्तर पर उन्होंने जो संवारा ब्रज को, वो सर को संवारा। सर का अर्थ होता है सरोवर, जलाशय, तालाब, कुंड, उनको संवारा। इसमें भी एक विशेष समझने वाली बात है कि कुछ कुंड पहले से उपस्थित थे, इस नंद सरोवर, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड कृष्ण के उपस्थिति में बनाया गया, बन गया, प्रकट हो गया। मानसी गंगा कृष्ण ने प्रकट की। और कुछ कुंड ऐसे हैं जो श्री कृष्ण भगवान के जाने के पश्चात वज्रनाभ ने बनवाए, जैसे मोती कुंड। भगवान ने तो अपने घर के पीछे मोती बोए थे, लेकिन मोती कुंड उसके बाद में बनाया गया। तो इस तीन प्रकार के कुंड है, जो पहले से थे, बाद में कृष्ण के जीवन में प्रकट हो गए, बाद में कृष्ण के बाद में बनाए गए। इन सारे वनों को जो कृष्ण ने बनाए थे, कृष्ण के पहले उपस्थित थे, इन सबको वज्रनाभ ने संवारा। तो क्या क्या बताया मैंने, वन और सर, और तीसरा क्या है, विग्रह। उन्होंने कहा जगह जगह आप विग्रह स्थापन करो। तो वज्रनाभ ने कौन से विग्रह बनाए, बहुत सारे बनाए, लेकिन प्रधान विग्रहों में से राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी वृंदावन के, राधा गोपीनाथ जी, ये उनके प्रमुख विग्रह हैं, जो भगवान के चरण के, भगवान के वक्षस्थल के और भगवान के मुख कमल के प्रतिनिधि हैं। ये हमारे गौड़ी संप्रदाय में सब जानते हैं। लेकिन जो बहुत सुंदर और बात है उसके आगे वाली, कि राधा रानी का विग्रह भी वज्रनाभ ने बनाया। चार जो महादेव हैं, भूतेश्वर महादेव मथुरा में, गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, चक्रेश्वर महादेव गोवर्धन में, और कामेश्वर महादेव काम्यवन में, ये स्वयं वज्रनाभ जी ने बनाए। एक बलराम जी का विग्रह है जो है 6 फीट 6 इंच का, वो दाऊजी में है, दाऊजी नाम का एक स्थान है जहाँ पर क्षीर सागर कुंड है, वो भी 6 फुट 6 इंच की मूर्ति जो है वो वज्रनाभ जी महाराज ने बनाई। गोकुल में जो ठाकुर जी की मूर्ति है जिसमें परिवार का दर्शन है, वो भी वज्रनाभ ने बनाई। कृष्ण बलराम का विग्रह भी वज्रनाभ ने बनाया। और जितनी देवियां हैं, पातालेश्वरी और योगमाया वृंदावन में, जितनी भी देवियां हैं जो शिव जी की वो प्रियसी है, उनके विग्रह भी वज्रनाभ ने बनाए। रेवती बलराम जी, ये ऊंचे गांव में जो विग्रह है वो भी वज्रनाभ ने बनाया। दो लाइन में कहा जाए तो रेवती अपने पति बलराम जी के साथ विवाह करने के बाद अपनी प्रिय सहेली ललिता को मिलने आई थी, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ पर विग्रह स्थापन किए गए। वो फिर कुछ समय के बाद लुप्त हो गए, फिर नारायण भट्ट गोस्वामी ने उनको दोबारा प्रकट किया हिंस की झाड़ी में। यही नारायण भट्ट गोस्वामी ने वज्रनाभ ने स्थापन किए हुए लाडली लाड़के विग्रह भी लुप्त हो गए थे। ये लुप्त क्यों होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अपने इच्छा के अनुसार धाम को प्रकट करते हैं, विग्रहों को प्रकट करते हैं, उनको अप्रकट करते हैं, संतों को भेजते हैं, फिर प्रकट करते हैं, फिर अप्रकट करते हैं, और ये सारी प्रक्रिया में संतों का बड़ा सहभाग होता है। संतों के बिना ये कार्य नहीं करते भगवान, संतों के हाथों से ही करवाते हैं। तो ये जो नारायण भट्ट जी, ये नारद मुनि के अवतार हैं, उनका जन्म ऊंचे गांव में हुआ था, और ऊंचे गांव में उन्होंने प्रवृत्ति बलराम का विग्रह प्रकट किया और लाडली लाल का विग्रह भी उन्होंने प्रकट किया। कहाँ से उनको स्वप्न आया कि लाडली लाल के विग्रह भानुगढ़ में शिला के अंदर छुपे हुए हैं। स्वप्न में राधा रानी उनको हाथ पकड़कर वहाँ तक ले गई। जो आज का जो मंदिर है ना, वो मंदिर से कुछ 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जयपुर मंदिर की ओर, उसके बराबर बीच में है। अच्छा उधर लिखा भी है, राधा लाडली लाल प्राकट्य स्थली श्री नारायण भट्ट भजन स्थली, वहाँ पर उन्होंने तब भी किया था। तो सपनों में दिखाया कि मैं यहाँ हूँ। तो फिर सुबह उठकर उन्होंने ब्रजवासियों की सहायता से वहाँ से लाडली लाल के विग्रह प्रकट किए और जो आज मंदिर है वहाँ पर स्थापन किए। जहाँ पर आज मंदिर है वहाँ पर राधा रानी का महल था, वहाँ राधा रानी अपने परिवार के साथ रहती थी। कौन कौन है उनके परिवार में, वृषभानु बाबा उनके पिताजी, सूर्य के अवतार है वो, कीर्ति माता जी उनकी पत्नी वृषभानु महाराज की, बड़ा पुत्र श्रीदामा, बीच में राधा रानी, और छोटी बहन अनंग मंजरी जो बलराम जी का अवतार है। बलराम जी प्रेम लीला माधुरी लीला में अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी के घर में जन्म लेती है और पूरी सहायता करती है। वो रूप गोस्वामी की असिस्टेंट मंजरी है, बहुत सुंदर परिवार है। तो ये लाडली लाल जी के विग्रह पुनर्स्थापित हो गए। बीच में एक बार क्या हुआ कि जयपुर के राजा आए तो यथावकाश वो मंदिर जो बनाया गया वो जीर्ण हो गया, तो उसका इतना वो वैसा हो गया था कि जयपुर के राजा माधो सिंह को लगा कि ये तो भी रिपेयर करने के लायक भी नहीं है, तो उन्होंने नया मंदिर बनाया दानगढ़ पे, जो पीले रंग का महल है ना वो उन्होंने बनाया और बहुत साल लगे उसको बनाने में, बहुत खर्च भी आया। उस समय पर कोई क्रेन वेन नहीं था, हाथी पे शिलाओं को लाद कर ऊपर लेके जाते थे, फिर उसको वो क्या कहते हैं उसको, स्कल्पटिंग, शिल्पकला करते थे। इतना भव्य मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है। तो राधा रानी ने एन मौके पर जब भी उनका प्रतिष्ठापना वहाँ से यहाँ लाकर करने का था, तो फिर स्वप्न दिया कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा ये निज धाम है जहाँ पर मैं अभी हूँ। कैसा भी आपको लगेगा फिर भी वो मेरा निज धाम है, मेरा निज धाम, मेरा निज घर छोड़कर मैं नहीं आ सकती। तो राजा ने अपने इष्ट राधा रानी की इच्छा को शिर सावंद्य मानकर दूसरे विग्रह स्थापन किए, जिनका नाम क्या है, राधा कुशल बिहारी। तो राधा कुशल बिहारी जी का विग्रह स्थापन हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ, आप जानते हैं ना, जब भी शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में थे तो मुगलों का बहुत आक्रमण हुआ करता था। पूरा भारत है ना एक प्रकार से भरी बहुत भयंकर आतंक में था, और उस समय सब जगह अफवाहें आती थी, अरे वृंदावन में आ रहे, अरे वृंदावन में आ रहे, अरे उधर आ रहे, काम्य वन में आ रहे, इधर आ रहे, उधर आ रहे। तो सब लोग अपने विग्रहों को लेके भागते थे। तो जब वृंदावन में आए उनकी खबर के आ रहे, तो रातों रात मदन मोहन जी को और गोविंद जी को, गोपाल जी, गोपीनाथ जी को जयपुर शिफ्ट किया गया, राधा वल्लभ जी को काम्यवन शिफ्ट किया गया, बांके बिहारी जी को राधा कुंड पे शिफ्ट किया गया। राधा रमन जी भी कुछ समय आए थे, लेकिन राधा रमन जी छोटे से हैं तो उनको बिस्तर के नीचे छुपाया गया। ऐसे अलग अलग विग्रहों की अलग अलग कहानी है, लेकिन सब लोग आतंक में बहुत परेशान थे। राधा गोविंद जी कुछ समय राधा इधर रहे, राधा कुंड पे, फिर कुछ समय काम्यवन में रहे, फिर वहाँ से जयपुर चले गए। लेकिन वृंदा देवी उनकी जो सहेली, उनकी जो पार्षद थी, उनके साथी, वो कहते आप तो जगन्नाथ हो, मैं तो वृंदा देवी हूँ, वृंदावन की देवी हूँ, मैं यही रहूँगी। तो वो काम्यवन में रह गई। इसलिए काम्यवन में ओरिजिनल वृंदा देवी का मंदिर है, उनका निज धाम है वो। एनीवेज, इस प्रकार से एक बार यहाँ पर भी मेव अलग प्रकार के यवन थे, वो मुगल में वैसे अलग अलग प्रकार की जातियाँ उनके अंदर, 150 जातियाँ हैं उनके अंदर, और 150 में से एक की भी दूसरे के साथ बनती नहीं है। मज़े की बात है बहुत। और हर एक जो 150 उनके, जो भी आप जाति कहो, प्रजाति कहो, पंथ कहो, कुछ भी कहो, वो कहते हैं कि हमारे अलावा सब लोग जहन्नुम में जाएंगे, बाकी सब लोग जन्नत में जाएंगे। एनीवेज, तो वो मेव जो है वो राजस्थान की ओर से आ रहे थे हमला करने के लिए, जो खबर आ गई तो उस समय राधा रानी के विग्रह को यहाँ से निकाला गया। बड़ी अद्भुत कहानी है राधा रानी की। राधा रानी और कृष्ण भगवान के डर कर नहीं भागते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपके भगवान तो भाग जाते हैं और हम भी उनको तोड़ देते हैं, क्या क्या आपने आपके भगवान ने, ऐसा कहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि ये भगवान की लीला है, भगवान अपनी लीला बहुत लोगों पर बरसाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक नवल किशोर गोस्वामी नाम के वृद्ध गोस्वामी को पूजा करने के लिए तय किया और रातों रात वो विग्रहों को स्थलांतरित किया, और एक राजस्थान में गांव है श्योपुर, SYOPUR, श्योपुर नाम का गांव है, वहाँ पर राजा किशोरी दास, बहुत बड़े महाराज थे वो, बहुत शक्तिशाली और बहुत भक्त थे राधा रानी के, उन्होंने बड़े प्रेम से उनको बुलाया कि हमारे पास रखो, हम उनको रखेंगे अपने पास सुरक्षित। तो आप कहेंगे वहाँ पर नहीं आए क्या लोग आक्रमण करने के लिए, ये राजपूतों की विशेष बात है, राजपूतों इतने शक्तिशाली थे कि वहाँ पर कोई आक्रमण नहीं हुआ और किसी का हमला नहीं हुआ। जैसे वो जयसिंह, राजा जयसिंह थे, वो भी बड़े पराक्रमी थे, उन्होंने गोविंद जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी को अपने पास रखा। पूरा शहर जयपुर का जो है उसके केंद्र स्थान में, जहाँ राजा का महल होना चाहिए, वहाँ पर गोविंद देव का महल बनाया। इतना विशाल 8 गेट है उसके अंदर, 4 दिशा में 4 मार्ग है और एक एक मार्ग में 6-6 एंट्रेंस हैं। हाथी भी, घुड़सवार हाथी सवार भी जा सकता है, रथ भी जा सकता है, आज अपने डबल डेकर बस भी जा सकती है। और वो चारों जहाँ मिलते हैं बीच में, तो केंद्र स्थान में राधा गोविंद जी बड़े ठाट से खड़े हैं। ऐसा राजा ने मंदिर बनाया, वैसे ही राजा किशोरी दास थे, उन्होंने अपने वहाँ विग्रह ले गए और ऐसे ही मंदिर बनाया लाल पत्थर का। आज भी वो मंदिर वहाँ पर श्योपुर में है, कभी जाएंगे हम लोग वहाँ पर। तो वहाँ पर फिर नवल किशोर जी महाराज, उन्होंने सेवा इस्टेब्लिश किया और किशोरदास ने बहुत उनको मदद की, रद्दा रानी के बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाए, बहुत सुंदर सेवा की। और यहाँ पर क्या हुआ, आपने मंदिर में आज कोई गया था मंदिर में? वो जो दो लंबी सखियाँ खड़ी है ना बाजू में, ललिता विशाखा, वो आजकल हर रोज़ लाते नहीं लेकिन हर रोज़ वहाँ पर होती है। तो उन्होंने विशाखा को लाडली जी की जगह पर रखा, यानी बोलते ना वो लोकम, मेडिकल में बोलते लोकम, टेम्पररी पोस्ट रहता है, जब भी बिग बॉस इज नॉट देयर तभी सम अदर पर्सन इज टेकिंग चार्ज, एक्टिंग इन चार्ज। तो विजय विशाखा जी को लाडली जी के स्थान पे बिठाया और फिर लाडली जी अपना कारोबार कर रही है। और फिर वो आए मेव, मेव यानी जो सैनिक थे वो चिल्लाते चीखते वो आए और पूरा राजा रानी का जो पहाड़ है ना वो पूरा घेर दिया चारों तरफ से। सैन्य का एक तरीका होता है, वो पहले ना आक्रमण किस पर करना है ना उसको पहले घेर लेते हैं चारों तरफ से और फिर आक्रमण करते हैं ताकि कोई भाग ना जाए। वे यहाँ से करेंगे तो पीछे भाग सकता है वो, तो पहले घेर लिया पूरा। पूरा पहाड़ पर शस्त्रधारी मेव खड़े, सब लोग रो रहे थे अभी क्या होगा, मंदिर विध्वंस होगा। तो विशाखा लाडली जी ने, उस समय उसका नाम था विशाखा लाडली जी, तो विशाखा लाडली जी ने चमत्कार किया, उन्होंने हर एक मेव से मेव के सामने एक शस्त्र सज्ज सैनिक उपस्थित किया, निर्माण किया। अचानक सबके सामने ऐसे, समझो आपकी सेना है पूरी यहाँ पर, आप ही हमला करने वाले, अचानक आपके हर एक के सामने एक सैनिक खड़ा होता है शस्त्र सज्ज लंबा चौड़ा। और कुछ ही क्षणों के अंदर वो जो एक एक निर्माण हो गया उसने अपने सामने वाले को ख़त्म कर दिया, कुछ समझने के पहले वो समाप्त हो गए सब। और एक राजा सेनापति बच्चू सिंह थे, उनको जब खबर मिली, वो भी राजपूत थे, वो भी वहाँ से भाग के सेना लेकर आए कि राधा रानी के धाम को बचाना है, लेकिन वो आने के पहले सब ढेर हो गए। जब वे आए बच्चू सिंह अपनी सेना लेकर तो सारे मेव ढेर हो चुके थे और कोई नहीं था वहाँ पर, क्योंकि जो प्रकट हुए वो प्रकट हुए, काम किया और अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए। इस प्रकार से उनका नाम पड़ा विजय लाडली जी, क्योंकि विशाखा जी ने विजय दिलाई, राधा रानी का विजय हुआ यानी उनके धाम का, तो उनका नाम पड़ा विजय लाडली जी। फिर वो वापस हिम्मत नहीं हुई किसकी आक्रमण करने की, फिर किशोरी दास के यहाँ पर भी ये खबर पहुँचती रहती ना कैसा हुआ वैसा हुआ, तो यहाँ के ब्रजवासी राधा रानी पर इतना प्रेम करते हैं तो उनको लगा संकट था, तो राधा रानी का विरह सहन किया हमने, अब संकट समाप्त हो गया, अभी राधा रानी वापस आनी चाहिए। लेकिन एक बार जो राधा रानी की सेवा करता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो आसक्त हो जाते हैं। जो हृदय से राधा रानी की सेवा करता है वो राधा रानी उस पर आसक्त होती है और वो व्यक्ति भी राधा रानी पर आसक्त हो जाता है, ऐसा एक संबंध बनता है, बॉन्ड बंधन हो जाता है, प्रेम का बंधन। वैसे बंधन में कोई फंसना नहीं चाहता है, फ्री रहना चाहता है, लेकिन ये एक बंधन ऐसा है कि उसमें हम सब फंसना चाहते हैं, वी लव टू बी देयर इन दैट बॉन्ड। तो किशोरीदास जी बहुत आसक्त हो गए थे ना, अभी इतना दिन सेवा किया, वो भी उन्होंने भी महल बनाया, अच्छा मंदिर बनाया, तो भी यहाँ के लोग वो है ना गोस्वामी मंडल प्रतिनिधि मंडल श्योपुर पहुँच गया और श्योपुर में राजा से उन्होंने शिष्टाचार के साथ में प्रस्ताव रखा कि अभी संकट तो टल गया है, संकट के समय पर आप हमारी राधा रानी आपके पास आई थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आपके बहुत ऋणी हैं, अभी राधा रानी को स्वगृह में आना चाहिए। तो राजा ने कहा नहीं, तो राजा है ना वो, ये तो ब्राह्मण है, तो राजा ने कहा नहीं नहीं हो सकता है, राधा रानी को हम नहीं छोड़ सकते। तो ब्राह्मण बेचारे क्या करते हैं, थोड़ी उनका शस्त्र अस्त्र है, कुछ नहीं उनके पास, तो निराश होकर दुखी होकर रोते रोते चले गए। और उस दिन से राजा किशोरी दास वो सतर्क हो गए कि अभी गोस्वामी लोग आ गए हैं, अभी कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने ना एकदम सख्त पहरा लगा दिया, कड़ा पहरा, तीनों हम जो कहते हैं ना 24 आवर्स, तीनों आठों प्रेयर, और कहा कि हर जो अब से सीसीटीवी लगाते हैं ना हम लोग, सीसीटीवी क्लोज सर्किट टीवी, इससे क्या होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस समय कितने बजे था, क्या किया, सब कुछ दिखाई पड़ता है उसमें। जब चाहे आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो वैसे सख्त पहरा लगाया और रिपोर्ट भी जाती थी क्या हो रहा है, इस समय क्या हुआ, उस समय क्या हुआ। और एक रूल बनाया कि इसके पहले मंदिर खुला रहता था, कोई टेंशन नहीं था। अभी मंदिर को बड़ा ताला लगाया जोरदार, और वो नियम बनाया कि रात को नवल किशोर गोस्वामी को चाबी बंद करके सैनिकों के हाथों राजा के महल पहुंचानी है। राजा चाबी अपने पास रखेगा, ऐसा नहीं कि मंत्री के पास रखेगा, वो चलाएगा, राजा अपने पास रखने लगा। सवेरे उठकर गोस्वामी जी को राजा के महल में आना है और चाबी लेकर खोलना है, उत्थापन, मंगला, बालभोग सब करना है, और सबको कड़ी निगरानी, आंखों में तेल डालकर आपको निगरानी करनी है, कुछ भी यहाँ के मूवमेंट मुझे पता चलना चाहिए। फिर वो शुरू हुआ, वो खबर यहाँ आ गई, अरे ये भी तो पहरा लगा दिया, कोई चांस नहीं लाने का। अभी राधा रानी का क्या हो रहा है, राधा रानी ने किशोरीदास पर कृपा करने के लिए सब लीला किया, राधा रानी को प्रसाना बहुत प्रिय है, तो राधा रानी व्याकुल हो गई कि मुझे जाना है। तो उन्होंने एक दिन, राधा रानी ने नवल किशोर गोस्वामी से कहा, हे गोस्वामी चल मुझे ले चल, बरसानो ले चल। तो वो दंग हो गई एकदम, वो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो इतना बुढ़ा हूँ, अगर मैं कुछ करूँ भी तो भागूंगा कैसे मैं, और आपको लेकर कैसे भाग सकता हूँ। अभी आपको लगा होगा अरे अचानक राधा रानी ने बात कैसे की, तो शास्त्रों में लिखा है जब हम में से भी कोई शुद्ध हृदय हो जाता है तो राधा रानी आपसे संवाद करना आरंभ करेगी। पहले आपको अप्रत्यक्ष राधा रानी, श्याम सुंदर, गोविंद जी, गोपाल जी, कृष्ण बलराम, नरसिंह भगवान, जो भी विग्रह है भगवान के, पहले आपको मूर्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष अनुभव देंगे। जैसे मीरा रोड में एक बार, कोई प्रतिष्ठापित मूर्ति भी नहीं है, वो हमारे मीरा रोड में ऐसा है कि हर एक के घर में जगन्नाथ जी है, कोई प्लान नहीं था, अपने आप सबके घर में जगन्नाथ जी है। तो एक माता जी के घर में भी थे, रात को ऐसे नींद से जोर से सपने में से उठी हो, क्यों, उनको सपना आया कि जगन्नाथ जी ऐसे प्यासे बच्चा तड़प रहा है, मैया पानी दो, मैया पानी दो। तो झट से उठी और जाके खोला, उसने ऑल्टर देखा तो रात को पानी रखना भूल गई थी वो, तुरंत पानी रखा तो आनंद आया। तो ऐसा अप्रत्यक्ष अनुभव देते हैं स्वप्न में आकर, या ऐसे कोई घटनाएं होती है जो सामने वाले को पता चलता है कि ये उनका संदेश है मेरे लिए, दिस इज द मैसेज फॉर मी। और उसके आगे जाकर पहले स्वप्न में आते हैं, ये शास्त्र का विधान है, पहले स्वप्न में आते हैं फिर ध्यान में आते हैं। आप बैठे हुए ध्यान में तो आपको साक्षात दर्शन होते हैं, फिर प्रत्यक्ष होते हैं। ध्रुव जी महाराज को क्या हुआ था बताओ, पहले ध्यान में दर्शन हुआ, फिर प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, ध्यान में थे वही प्रत्यक्ष खड़े हो गए। तो हम सबको ठाकुर जी के साथ प्रेम संवाद करने की अवसर सुविधा है, जब हम शुद्ध हो जाएंगे ठाकुर जी हमसे बात करेंगे। नवल किशोर गोस्वामी बड़े शुद्ध भक्त थे, तो राधा रानी को कहती है मैं बताती हूँ कैसे कर, एक झोली लेना, सारे अलंकार उतार के रख देना, शयन के वस्त्र जो है वही रखना मेरे ऊपर, और कुछ मत लेना, ना माला, ना फूल, ना झोली, कुछ नहीं, एक झोली में रखना, झोली गले में डालना, और जब रात को मुझे शयन कराते हो तो एक ऊपर की चटकनी खोल देना। चटकनी मतलब क्या, बोल्ट, एक खिड़की का जो चटकनी है उसको खोल देना और खाली खींच के रखना, इन बाहर से खोल सकता है, ऐसे बंद रखना लेकिन लॉक मत करना, और फिर सब मंदिर लॉक करके चाबी राजा को दे के जाना, और कुछ ही एक आध घंटे में अंधेरे में आना और ऊंचाई से झटकने का दरवाज़ा जो है खुला रखा है उसको खोलना, अंदर आना और मुझे लेकर वहाँ से भाग जाना। इतना सिंपल प्लान है। तो हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं अरे आपको झटकने से मुझे कूदना पड़ेगा, वहाँ से भी जंप मारना पड़ेगा, और अगर खबर खनक लगी किसी को, भनक लगी तो क्या होगा, मैं बूढ़ा तो पिट जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले कोई चिंता मत कर, मैं कह रही हूँ चलो जा। तो वैसे ही किया उन्होंने, लॉक किया, चाबी दिया महाराज जी को, और रात को आए, खुद लगाई, चटकनी खोली और राधा रानी के विग्रह सब अलंकार सब सब कुछ उतरे हुए थे शयन में, और भी जो भी था भारी उतार दिया, दोनों को थोली में रखा, थैली गले में लगाई, ऐसा पकड़ के जंप मारी। इसे अभी समझो हम भी जंप मारेंगे ना तो बहुत दर्द होगा अभी, क्योंकि उम्र हो गई है। तो वो तो बहुत बुजुर्ग थे, 90 साल के थे वो। ऐसा हुआ हवा की तरह उतरे वो, जैसे कि गुल कॉटन में उतर रहे हैं, मक्खन में उतर रहे, ऐसे छलांग लगा के उतरे और बीच रात में भागने लगे। लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ कि ऐसा वृद्ध व्यक्ति विग्रहों का, अब ये भी विग्रह आप दोनों समझो एक में गले में रखेंगे ना बहुत भारी हैं, 50 किलो तो होंगे मिनिमम, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन भारी होते हैं वो, एक एक आदमी संभाल के ले जाते हैं। तो वो लगा के छलांग लगाई और जो भागने लगे तो कहते हैं कि वो हवा में ही उड़ के जा रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि दौड़ रहे हैं और थक रहे हैं और हाँफ रहे हैं, ऐसा चल रहे थे तेजी से कि हवा में से उड़ रहे थे। अभी रात भर भागते रहे वो, रात भर भी। फिर रात को रात समाप्त हो गई और 4 बजने का समय, उसको हम ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, प्रथम प्रहर। तो क्या वो प्रहर है, उसमें राधा रानी को जगाते हैं, जगा कर उनका मंगल भोग करते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, फिर आगे का श्रृंगार करते हैं। तो उनको लगा मैं बहुत दूर आया हूँ, तो बीच में चंबल का खाई आ गई, चंबल का खो, चंबल चंबल का खोरी, यानी क्या कहते हैं, वैली वैली, वहाँ पर बहुत डकैत रहा करते थे पहले, अभी भी फेमस है हमारे बचपन में भूगोल में कहते थे, ज्योग्राफी में, इतिहास में, कि चंबल की खाई में वो डाकू रहा करते थे। तो ऐसे खोल यानी बहुत गहरी खाई में वो उतर उतर के गए थे, तो पूरा नहीं गए थे लेकिन उधर आप पहुंच गए वो, तो उसके आगे खाई है, उस खाई में बहुत गहरा गहरा 7-8 पुरुष का पानी है। तो उसने वो देखा नहीं अंधेरे में, लेकिन पहले उनको वो झोली को एक पेड़ के शाखा पर लटकाया और स्वयं जाकर वो जो खाई का पानी है उसमें पास पास में जाकर स्नान किया। नियम तो नियम होता है ना, भले आप संकट में हो या किसी आपात स्थिति में हो, पूरा किया, स्वच्छ हो गए, शुचिर्भूत हो गए और उन्होंने मंगला आरती शुरू की जो भी था उनके पास। अभी जब मंगला का समय हुआ तो राजा को पता है कि पुजारी जी आएंगे, चाबी लेके जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है 5-10 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, उजाला हो गया, फिर भी पुजारी का नाम निशान नहीं। तब राजा ने संदेश भेजा, जाओ देखो मंदिर में क्या हो रहा है। मंदिर में देखा तो मंदिर लॉक है, सब जगह जाके देखो तो पीछे से खिड़की खुली है, वहां से जंप मार के अंदर आए, या तो मतलब दरवाजे से आए होंगे, विग्रह भी गायब है। लाडली लाल जी नहीं है वहां पर, तो समझ गए बूढ़ा पुजारी लाडली को लेकर भाग गया। तुरंत घोड़े दौड़ाए, जाओ पकड़ो उनको, वापस लेके आ विग्रह को। तो घोड़े दौड़ाए, अभी देखो कितना डेस्परेट कंडीशन है, कितने घंटे बीत गए हैं, चलो चलने वाला आदमी कितना चलेगा, बुढ़ा है, लेकिन बहुत घंटे बीत गए, लेकिन इनको आदेश था जल्दी जाओ दौड़ाओ घोड़ों को। तो घोड़े तो कुछ ही हो सकता है हमारी भाषा में, 1 घंटे में पहुंच गए होंगे, रात भर का सफर 1 घंटे में घोड़ों ने भी। तो उस समय ना वो ऐसा नीचे है पहाड़ के, उधर दिख रहा है वो शाखा में ठाकुर जी की मंगल आरती कर रहे हैं, अरे वो ऊपर घोड़े पे खड़े हैं। हे पुरोहित बाबा चल वापस आ जा, मरना है क्या तुम्हें, राजा ने वध करने का आदेश दिया है, ऐसे ही। तो वो राजा रानी को बोलने लगे, मैंने कहा था ना तुम मुझे तो जान से ही मरवाएगी, बोले तो कोई चिंता मत कर, तुरंत आरती वारती रोक दे, थैले में डाल, गले में डाल और कूद जा। बोले कितना गहरा पानी में कूद जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो कह रहे हो ना कूद जा तू। तो राधा रानी के शब्द पर, आदेश पर, विश्वास, निष्ठा, प्रेम से छलांग लगाई ना तो ये एड़ी तक पानी हो गया, उतना इतना सा ही पानी हो गया। और वो गिरे और गिर गए और कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि ऐसे रुई में गिर रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, ऐसे आराम से हवा में से आराम से जा रहा है। और इतने पानी में से ऐसे भाग भाग के चले गए, पार कर दिया चंबल की खाई उन्होंने। तो यहाँ पर घोड़े घुड़सवारों को बहुत क्रोध आया, भाई वो कूद गया तो हम भी घोड़ा लगा के कूदते हैं। लेकिन जब वो कूदने का प्रयास किया तो घोड़े ई कर रहे हैं ऐसे, पता है ना आपको कैसे घोड़े मना करने के वैसे उल्टे जाते हैं। कई बार कोशिश की, क्योंकि घोड़ों को पता है कि पानी कितना गहरा है, वो नहीं छलांग लगाएंगे। तो उनको आश्चर्य लगा, रहे बुढ़ा कूदा तो एड़ी तक पानी और हम कूदने का प्रयास कर रहे हैं तो सात आठ पुरुष पानी, बहुत प्रयास किया यहाँ से वहाँ से, कहीं से भी थोड़ा कम गहरा होगा, सब जगह उतना ही गहरा है और उनके आंखों के सामने वो जा रहे हैं, वो जा रहा है, वो सीन देख रहे हैं, उसमें एड़ी तक पानी है, हम कूदने जाएंगे तो सात आठ पुरुष पानी है, ये क्या चमत्कार है। तो देखते रह गए, वहाँ से पार हो गए तो वो राजा की जो सरहद थी ना, सरहद यानी सीमा समाप्त हो गई, बरसाने की सीमा शुरू हो गई, तो आराम से चलने लगे। घोड़े जो नहीं जा पाए वो भाग के राजा के पास आए, पूरा वर्णन बताया राजा को, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मृग तुम्हें क्या देखा, हम नहीं छलांग लगा पाए, बुढ़ा तो छलांग लगा के ऐसे चलते चलते आराम से चला गया। तो राजा बहुत दुखी हो गए और फिर ये वापस आ गए लेके उसको, सबने उसका जंगी स्वागत किया, बहुत धूमधाम से सब जगह पताका लगाई गई, फूल चढ़ाए गए और बहुत बड़े बड़ा भोज दिया गया। उस दिन राधा रानी को अपने स्थान पर बिठाया गया, विजय लाडली जी को फिर उनके स्थान पर बिठाया गया। बड़ी धूमधाम से राधा रानी लौट के आई। उसके बाद किशोरी दास आए अपने सैन्य को लेकर, लेकिन ये तो उनका राज्य नहीं है। तो उन्होंने कहा, राजा बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सेवा की है, लेकिन राधा रानी अभी लौट के नहीं जाएगी, राधा रानी अपनी इच्छा से आप आइए। तो बहुत सुंदर कहानी है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएँ प्राप्त हैं। एक तो राधा रानी अपना धाम कोई छोड़ती नहीं है, दूसरा अपने भक्तों के साथ लीला करती है, भक्तों को सेवा का मौका देते हैं। श्रीनाथ जी भगवान ने भी ऐसी बहुत लीला की, कृष्ण भगवान की साक्ष्य लीला की जो प्यास थी वो अपूर्ण थी, बुझी नहीं थी, तो उन्हें कलयुग में दोबारा जन्म लिया, अपने आठ भक्तों को जन्म दिया, अष्ट सखाओं को, कभी प्रकट कभी अप्रकट, प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष लीला की उनके साथ। और ऐसे ही अफवाहें चला देते हैं, आगे मुगल आ गए तो सब पुजारी लेके भागते गोवर्धन से उनको, फिर महाप्रभु जी को दर्शन देना था उनको, तो महाप्रभु को दर्शन दिया उन्होंने इस प्रकार से। और एक बार श्रीनाथ जी महाराज ने अफवाह चलाई, क्योंकि उसमें रूप गोस्वामी और सारे गोस्वामी को दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी, तो उसमें मथुरा पर भगा के ले गए उनको, तो सारे गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी और रूप सनातन आदि छह गोस्वामी सारे ब्रजमंडल के गोस्वामी सब भागे मथुरा, और 30 दिन तक उन्होंने श्रीनाथ जी महाराज की वहाँ सेवा की एक तरह से गुप्त रूप में, बाद में पता चला अफवाह दी, फिर लौटा दिया उनको। ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। आज सुबह मैंने एक कथा सुनी कि हमारे ठाकुर जी पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है या पेंट नहीं है, वो है ही नहीं, खाली वो उपयोग किया जाता है उनको प्रकट करने के लिए, लेकिन साक्षात है वो। तो राधा रमन जी के ऐसे कई चमत्कार हैं। राधा रमन जी के मंदिर में कैसा है ना, बहुत छोटे से विग्रह हैं, ये हमारी 12 उंगलियां ऐसे करेंगे ना उतना ही है, द्वादशांगुल विग्रह है, तो बहुत छोटे से हैं। तो वो मंदिर में जब बंद होता है, चांदी का दरवाजा होता है, वो जब खोलते हैं मंत्र बोलकर, फिर आगे एक पर्दा होता है, फिर पर्दे के सामने मंत्र बोलकर ताली बजानी पड़ती है, वो नियम है उनका। फिर ठाकुर जी का पर्दा करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, पर्दा खोलते हैं और फिर ठाकुर जी को लेते हैं और फिर उनका प्रातः विधि जो भी है, उनके मुख मार्जन करना है, उनको स्नान कराना है, बाल वो खिलाना है, सब वो शुरू होता है। तो एक बार दोपहर में नहीं, पहले दूसरी बताता हूँ, रात को शयन करके सुबह उठाने के लिए जिनकी सेवा थी वो आए, और पता नहीं कौन से भाव में थे वो, उन्होंने दरवाजा के तो मंत्र बोले, दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन ताली बजाना भूल गए, और सीधे जब मंदिर खोला ना तो जहाँ पर शयन कराया था वहाँ ठाकुर जी ना ऐसे सोए थे, और एक हाथ राधा रानी के विग्रह पे था, राधा रानी उनके वक्षस्थल पर विराजमान थी और वो ऐसे उन पर हाथ रखे वैसे हाथ रखे सोए। फिर उनको जब उन्होंने ताली बजा के जगाया तो फिर पूर्ववत हो गए। अब बात की उनसे, अरे तुमने नियम तोड़ा ना और दर्शन किया लीला का तुमने, ऐसे बताया। वैसे तो उनका भाव का उन्होंने प्रतिसाद दिया था, तो उन्होंने कान में हाथ लगा, अरे मैं तो ताली बजाना भूल गया था, लेकिन आपकी कृपा है आपने दर्शन दिया, तो साक्षात है वो। फिर एक बार जिसकी सेवा थी वो दोपहर में राजभोग के लिए बंद करते है ना, दरवाजा बंद करते हैं, पर्दा भी लगाते हैं, उनको भोजन आरोपते हैं और फिर वापस मंदिर में प्रवेश करते, मंत्र बोलते, दरवाजा खुलते हैं, मंत्र ताली बजाकर पर्दा खोलते हैं, फिर ठाकुर जी को प्लेट निकाल देते हैं। तो वो गोस्वामी जी फिर वैसा ही हो गया, दरवाजा खोला लेकिन ताली बजाना और मंत्र बोलना भूल गए। जब पर्दा खोला गया ना तो राधा रमन जी के मुंह पर सब खीर थी जो भोग लग रहा था उसके अंदर। फिर बोले तुमने ताली क्यों नहीं बजाई, मैं तो भोजन कर रहा था, तुम बीच में आ गए। ऐसे अनंत अनुभव है राधा रमन जी के। एक बता देता हूं आपको, राधा रमन जी के विग्रह को कोई भी ड्रेस दोबारा नहीं पहनते हैं। सही कि ठाकुर है, आपको एक फोटो निकालेंगे ना तो बस एक ही फोटो है वो उस दिन का। कभी कभी दिन में भी चार चेंज करते हैं, लेकिन जो भी पहनते हैं वो दोबारा नहीं पहनते। उनके पास कभी भी 17-18 ड्रेस तैयार रहते हैं एनी टाइम। उनकी एक पद्धति है, सब पद्धति जो है ना वो उसको कहते हैं लाड लड़ाना, यानी रागानुगा भक्ति की प्रक्रिया है सब। वो ऐसे विग्रह सब रखते हैं उनके सामने, बंद बंद होता है श्रृंगार चलने के पहले, स्नान हो गया तो अभी सब वस्त्र ऐसे बिखेर के रखते हैं और एक एक करके उठाते हैं, सेट उनको दिखाते हैं, नीचे रखते हैं, दिखाते हैं। तो क्या देखकर वो उस दिन का ड्रेस तय होता है? जिस दिन जिस विग्रह को जिस ड्रेस को देखकर वो दांत दिखाते हैं वो उनको पहनाते हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, उनको दांत दिखाते हैं वो। आप राधा रमन जी की फोटो देखिए, हमारे पास रोज आते हैं, कभी आप एक भी दांत दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी दो दिखाई पड़ेंगे, कभी चार दिखाएंगे बड़े, कभी कभी 12-14 दिखाई पड़ेंगे, ऐसे भरा हुआ दांत। कभी कभी बच्चों के होते ना, बच्चे दांत निकालने को देते नहीं है तो पहला वाला दांत ऊपर रहता है, नीचे वाला दांत आता है जो परमानेंट टीथ है, तो ऐसे डबल डबल से मेनी टीथ आर देयर, वैसे कभी कभी दिखते हैं। ऐसे भी एक टीथ है, ऐसे भी एक टीथ है, ऐसे मुख से मुख भरा हुआ है और बड़ा स्माइल है, पर कभी कभी देखेंगे एक भी दांत नहीं दिखेगा उनका, तो हंसते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, एक बुढ़िया आई और राधा रमन जी का ड्रेस बहुत ऑपुलेंट होता है, इतने से है लेकिन उनके वो इतने छोटे ड्रेस के अंदर इतनी लेस लगाते हैं, मणि लगाते हैं, मोती लगाते हैं, मैंने बताया ना माता जी ने वो स्वर्ण अलंकार दिया उनको, इतना सुंदर है। मैं भूल गया आपको भेजने के लिए, याद करना मैं भेजता हूँ आपको उसके फोटोग्राफ्स। इतने महीन अलंकार होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत कीमती भी होते हैं। और ये सारे विग्रह अक्सर रियल ज्वेलरी पहनते हैं क्योंकि वो जनता से बहुत दूर रहते हैं, ऐसे जनता आक्रमण नहीं कर सकती, बहुत ऊंचाई पे रहते हैं और उसमें भी अंदर रहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं और अच्छा पहरा होता है। तो ये सारे विग्रह बहुत अच्छे, हमारे तिरुपति बालाजी हैं, श्रीरंगम महाराज हैं, ऐसे अलंकार पहनते, बाप रे 2.5 लाख करोड़ के प्रॉपर्टी है उनकी, अनंत पद्मनाभ जी की, विश्व का सबसे श्रीमंत मंदिर है वो। एनीवेज वहाँ नहीं जाएंगे। तो एक बुढ़िया आई और इतने सारे पूरे ऐसे क्या कहते हैं उसको लोडेड ड्रेसेस थे और वो बेचारे आई सूती वस्त्र लेकर, ना लेस है ना मोती है, खाली एक ऐसा सूती वस्त्र को डबल करके फोल्ड करके अस्तर लगा के बनाया है और गोस्वामी को देती है, भाई राधा रमन लाल को पहना दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे मैया ये कैसे पहनेंगे, वो उनका ड्रेस देखो कैसा होता है, वो नहीं स्वीकार करेंगे उसको। बोले कोई बात नहीं, आप तो रोज दिखाते हो ना, आप दिखाओ, मर्जी उनकी है, वो स्वामी है, हमारा काम सेवा करना है, हमने बना दिया, उनकी इच्छा है तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, हमने तो अपनी सेवा की, नहीं पहनना पहना उनकी इच्छा है। तो पुजारी को फिर भी ऐसा मन में था कि कैसे पहनेंगे इसको और क्यों दांत दिखाएंगे। तो उस दिन ना सारे 15-16 जो थे सब दिखाए, कोई दांत नहीं दिखा, सब समाप्त हो गया आज दिखाने वाला काम। उनको ये दिखाने की इच्छा नहीं थी लेकिन क्या करें, वो तैयार है ही नहीं कुछ, तो वो दिखा दिया, तुरंत दांत दिखा दी। उस दिन सूती वस्त्र का श्रृंगार किया राधा रमन जी ने। राधा रमन जी और सारे भगवान जो है बड़े प्रेमी भगवान है, अपने भक्तों से वार्तालाप करते हैं। और अभी जो अश्रद्धालु लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, वो तो कहेंगे कि हम और सुनने वाले सारे लोग मूर्खोत्तम महात्मा मूर्ख हैं, सब लोग ऐसी बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं जो सच ही नहीं है, सब लोग भ्रम में इल्यूजन में घूम रहे हैं। कि पत्थर की मुर्गी बोलती है, हंसती है, चलती है, क्या क्या करती है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए कोई वो नई बात नहीं है, कोई चमत्कार की बात नहीं है, वो रोज की बात है। वो देखते हैं रोज, ठाकुर जी हंसते हैं, खाते हैं, कभी नाराज दिखते हैं, कभी खुश दिखते हैं, कभी हर प्रकार का इमोशन दिखाते हैं वो। तो हमें भी उनके लिए ऐसे ही प्रस्तुत करना है अपने आप को। तो ये हुई राधा रानी की कहानी, कैसी लगी आपको? हरी बोल। तो एनीवेज, अभी आज हमारी कैंप की ये आखिरी कथा है, यहाँ के बाद में यात्रा शुरू होगी। तो 14 तारीख को वो था क्या, वसंत पंचमी, जिस दिन हम लोग कहाँ थे, फिलिप ओकर में, है ना। तो उस दिन ना पुंडरीक विद्यानिधि महाराज का जन्मदिन था। पुंडरीक विद्यानिधि चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे। कौन थे वो? वृषभानु महाराज थे। वृषभानु महाराज का अवतार है चैतन्य महाप्रभु लीला में, और राधा रानी ने गदाधर पंडित के रूप में अवतार लिया। राधा रानी स्वयं भगवान के हृदय में भी प्रवेश किया और भगवान को चैतन्य महाप्रभु बना दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि देखो अभी वो राजा की तरह थे, एक प्रकार से बहुत श्रीमंत थे वो। बहुत ऊंचे ऊंचे सिल्क के वस्त्र पहनते थे, उनका दुपट्टा, उनका हर चीज एकदम सा रॉयल हुआ करता था, ऐश्वर्य संपन्न। बहुत ऊंचे हीरे मोतियों के अलंकार पहनते थे वो। उंगलियों में मुद्रिकाएं हुआ करती थी, गले में हार, हाथ में बाजूबंद, ऐसा पूरा बहुत सुंदर। कान में कुंडल पहनते थे और ऊंचे ऊंचे सुगंधित द्रव्यों से बाल बनाते थे, बहुत सुंदर। उसको क्या कहते हैं, उसको संवारते थे बालों को, और ऊंचे ऊंचे सुगंधित द्रव्य जो है ना, इत्र इत्र लगाते थे, और बहुत ही ऊंचे प्रकार का पान खाते थे, और पान खाते समय आईने में अपने आप को देखते थे पान खाते हुए से। और बहुत लोग उनको छामर सेवा करते थे, हवा देते थे उनको, और बड़े रॉयली वो अपने आसन पे बैठते थे और लोगों से बात करते थे। फिर जो देख रहे हैं तो आईना दिखा रहा है उसको, याद करो तो आईना दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि कितना कामी और कितना लोभी और कितना डूबा हुआ व्यक्ति है। हाँ, स्वयं को क्या करते हैं उसको, अपने यश की वृद्धि करने के लिए या इंद्रिय भोग करने के लिए कपड़े ये वो सब, इतना ऐश्वर्य है। और मुकुंद ने गदाधर पंडित को कहा कि मैं अब आपके एक बड़े संत को मिलने लेके जा रहा हूँ, चलो। और गदाधर पंडित राधा रानी का अवतार है। वो कैसे थे पता है आपको? शास्त्र में लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कि गदाधर पंडित ने जन्म से लेकर कभी भी किसी इंद्रिय भोग की कामना नहीं की और कभी इंद्रिय भोग किया। इम्पॉसिबल टास्क है वो। नॉट अ सिंगल मटीरियल डिजायर, नॉट अ सिंगल मटीरियल डिजायर टू फुलफिल द डिजायर। ऐसे थे वो, नेचुरली थे ऐसे। तप नहीं कर रहे थे वो कि मुझे ये नहीं करना है, ये लड्डू खाने की इच्छा हो रही है लेकिन नहीं खाना है मुझे, ऐसे नहीं है। कोई आकर्षण ही नहीं है, कोई डिजायर ही नहीं है, कोई प्रयत्न ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है वैसा। हम लोग कहते हैं ना कि मराठी में कहते हैं ना हाड़ाचा वैद्य, म्हणजे कसा, वो बोन से ही डॉक्टर है। इतना मतलब उसकी जो वैद्यकीय कला है वो उसकी हड्डियों में से घुसी हुई, इतना वो हार्ड कोर, सभी हार्ड कोर भक्त थे भगवान के, और विरक्ति में एकदम अत्युच्च थे। तो मुकुंद जो है उनका मित्र, ऐसे परम विरक्त बालक को लेकर पुंडरीक विद्यानिधि के घर में आए, एक प्रकार से दरबार में आए। ऐसा छक 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 महल है उनका, पूरा शैंडेलियर लगे हुए हैं, पूरा ऐश्वर्य देखकर, वो संगमरमर के फर्नीचर है सब, उसमें अपने पुंडरीक विद्यानिधि बैठे हुए ऐसे सिंहासन पे, और वो जो मैंने बताया सब कर रहे हैं। तो गदाधर पंडित को लगा, अरे इधर क्यों लेके आया मुझे, आपने कहा था संत को मिलने ले जा रहे हो, इधर आके मैं क्या करूँ अभी, ये सब ऐश्वर्य देख के मुझे क्या मिलेगा। तो मुकुंद को समझ गया, समझ में आया कि इनके मन में कुछ ऐसा किंतु परंतु हो रहा है। तो उन्होंने ना भागवत के दशम स्कंद के एक अध्याय का श्लोक बोला, बरहा पीड़म नटवर बपू, वो मतलब दो कृष्ण भगवान, दो भाई जो है वो सिमिलर श्रृंगार करके मोर पंख पहनते हुए मुरली बजाते हुए वन में गौचारण कर रहे हैं। ऐसे दो श्लोक है उसके, पूरा उनका नखशिकांत वर्णन किया गया है। वो श्लोक सुनते ही ना, उसमें एक बताना भूल गया मैं, जो पान खाते थे ना तो बीच बीच में उसको पिंक कर देते, कोई आता था सोने की उसमें लेके जाता था, फिर वापस लेके जाता। ये सब चल रहा है और बीच में ये श्लोक बोला गया, मुकुंद ने बोला, जैसे ये श्लोक बोला तो पुंडरीक विद्यानंद इतने भाव विभोर हो गए, पूरा सिल्क का कुर्ता सब फाड़ दिया, अलंकार तोड़ के फेंक दिए, सब बाल बाल बिखर गए उनके और धाड़ करके जमीन पे गिर गए। उनको चार लोगों को भी संभलना मुश्किल हो गया। महाराज महाराज करके भाग के आ रहे, वो इतने बेकाबू हो गए कि कोई भी उनको पकड़ ही नहीं पाया। फाइनली वो अनेक सीढ़ियों से नीचे उतर कर बेहोश हो गए। कई घंटों तक बेहोश रहे, उनको होश में लाने के लिए बहुत प्रयास किया। तभी वो गदाधर पंडित को समझ में आया, अरे बाह्य दृष्टि से देखने से कुछ नहीं होता है, जैसे ही कृष्ण का श्लोक बोला गया भागवत का, तो इनका जो वास्तविक सत्य है या वास्तविक स्व है उनका, वो प्रकट हो गया। वो क्या है, मैं तो उनके कपड़ों को ही देखते रह गया और उनके भाव को नहीं पहचान पाया, मैं गलत समझा उनको, क्योंकि मैंने अपराध किया और मन में अपराध किया कि ये तो विषयी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, ये थोड़ी साधु है। तो फिर उसके बाद में इनको बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ना मन में बहुत अपराध किया इनका, बहुत अपना हृदय प्रकट किया मुकुंद के साथ, मुझे क्षमा करना, मैंने मन में से ऐसे बहुत सारी विचार किए उनके बारे में। अब मेरी एक इच्छा है कि अगर मुझे पश्चाताप व्यक्त करना है तो मुझे इनसे दीक्षा लेना है, जाके उनको कहना। तो तब फिर वो होश में आए, अपने आप को संवारा, उन्होंने घर में गए, अंदर नए कपड़े पहन के आए, सब फाड़ गए ना सिल्क के कपड़े, और गदाधर पंडित को शिष्य के रूप में स्वीकार किया। एक तरह से वृषभानु महाराज ने राधा रानी को अपना शिष्य बनाया। पिता पुत्री भी गुरु और शिष्य ही होते हैं। तो ये वृषभानु महाराज राधा रानी का कनेक्शन, इसलिए मैंने बताया आपको। दूसरा एक छोटा सा कनेक्शन बताता हूँ आपको कि अभी प्रभु रामचंद्र भी है ना खड़े, कहाँ गए प्रभु रामचंद्र, बैनर भी नहीं कुछ नहीं। प्रभु रामचंद्र के फोटोग्राफ किधर है, उधर पूजा हो रही उनकी। एनीवेज, जब प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया था तो आप जानते हैं ना कि ऐसे मैंने पढ़ा है, लेकिन हो सकता है उसका अर्थ एक ही है कि कम से कम समय में, लेकिन कहते हैं 45 मिनट में उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। जैसे पंखा चलता है ना, पंखा चलता है ना, वो पांच पे चलता है, तो आप बोलेंगे पांच पे चला के कितने पत्ते हैं इसके, तो आप बोल नहीं सकते, चार है कि तीन है कि पांच है, कभी पांच के छह के भी आते हैं, लेकिन जब वेग से वो घूमता है ना तो आप उसके पत्ते गिन नहीं सकते। कहते उसी प्रकार से प्रभु रामचंद्र ने कब बाण निकाला, कब चढ़ाया, कब खींचा, कब छोड़ा, कब निकाला, कब चढ़ाया, कब खींचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सुरपुणा का वर्णन कर रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतने भयंकर बाणों का वर्षा हो रहा था, और उसमें छोटे से समय में वो कुछ घड़ी के बोले, आधी घड़ी में कुछ बोला कि 14,000 जनस्थान के सैनिक जो है वो धराशायी हो गए, तीन महारथी अवैध्य जो उनको सब शिवजी का वरदान प्राप्त था, किसी के हाथ से मृत्यु नहीं संभव थी, वो भी खत्म हो गए। हमारे तीन भाई खर, दूषण और त्रिशिर, पहला त्रिशिर, बाद में दूषण, बाद में खर। खर तो रावण जैसा ही बलवान था, इक्वली पावरफुल, लेकिन ऐसे चुटकी में समाप्त कर दिया उनको। तो सीता देवी कभी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि जब ये राक्षसों का सब शुरू हुआ ना, तो क्या हुआ कि पुतना नहीं, क्या नाम, शूर्पणखा आई, और उसने जो भी किया आप जानते हैं, प्रभु राम से मोहित हो गई, मैं पत्नी बनना चाहती हूँ, मेरे पति बनो, हम ये जंगल में विहार करेंगे हाथ में हाथ पकड़ के, ये जो क्रूश यानी बहुत दुबली औरत है इसको देखकर क्या करोगे आप, त्याग करो इसको, मुझे स्वीकार करो, मैं देखो। तो कहते मैं तो एक पत्नी बता हूँ, ये पत्नी को छोड़ के आए, ये शायद आपसे विवाह कर सकता है, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण ने कहा देखो मुझे विवाह करने में कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं इनका दास हूँ, और आप मुझसे विवाह करोगे आप दासी बनोगे, इन दोनों का मैं सेवक हूँ, तो हम दोनों मिलकर दास दासी बनकर सेवा करने पड़ेगी। तो मैं और दासी, मैं तो ये जंगल की रानी हूँ। तो उन्होंने भी टाल दिया, फिर वापस राम के पास आ गई, समझ गई कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, तो इसके सबकी जड़ सीता है। तो सीता को जब पकड़ने गई वो, इसको पहले खा लेती हूँ फिर बाद में मेरा काम सिद्ध होगा, तो व्याकुल होगा तो मुझसे शायद विवाह कर सकता है। जब सीता की ओर झपटी तो राम के आदेश से लक्ष्मण ने उसके नाक और काट ऐसे काट दिए ना, एकदम एक्सपर्ट, इतने गति से और इतने कौशल्य से, केवल नाक और कान काटे, बीच में गले को थोड़ा धारने लगी उसकी, है ना, ऐसा चला चला इधर भी लग गया इधर भी लग गया, ऐसा नहीं, एकदम स्पेसिफिक, वो समझने के पहले ही कट गया। तो वो चीखती हुई चली गई जंगल के अंदर, अदृश्य हो गई। तो प्रभु राम समझ गए कि अब ये अपमानित स्त्री, वो भी राक्षसी, शांत नहीं बैठ सकती, अभी बड़ा आतंक होगा। लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ सीता को लेके उस गुफा में रखो, वो एक गुफा है सीता गुफा पंचवटी में, वो वहाँ पहरा दो, उनको अंदर बिठाओ पहरा दो, और हम राक्षसों निपटते हैं। तो ये सब कुछ जो खेल हुआ ना 14,000 लोगों को मारने का, तो वो सीता के अनुपस्थिति में हुआ। आप पूरा रामायण छान मार के देखिए, पूरा ऐसा सर्च करके करके देखिए, जब भी प्रभु राम ने राक्षस का वध किया है सीता उनके साथ में नहीं थी। सोचो आप इसके बारे में, क्योंकि सीता इतनी करुणामयी है, इतनी करुणामयी है कि उनके सामने किसी का वध हो ही नहीं सकता, इतनी करुणामयी है, वो तो करने देंगी नहीं वो। तो फिर पता चला उनको, क्योंकि देखो खबर तो मिलती है ना, तो सीता देवी को खबर मिली कि मेरे प्रभु ने इतने वीरता से, इतने छोटे समय पर, इतने कौशल्य से 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। तो कोई भी पत्नी बोलेगी, वाह क्या आप महाराज, आप कितने वीर हो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ आपकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने कहा, आप बड़े क्रूर हो, आप इतने क्रूर हो, आपको जरा भी दया नहीं है, ऐसे ऐसे मारते हो जैसे कोई मक्खी हो या कोई ऐसी चींटियाँ हो। 14,000 लोगों का वध किया आपने, कितनी क्रूरता है आपके अंदर। तो उन्होंने फिर उन्होंने वादा किया कि मैं अगले अवतार में आऊँगा ना, तो बहुत समय तक शस्त्र धारण नहीं करूँगा। फिर वो कृष्ण के रूप में आए, तो जितने समय ब्रज में रहे तो वही सीता मैया जो राधा रानी के रूप में आई, राधा रानी के रूप में आई, तो पूरे ब्रज जिला में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। किसी को पैर का स्पर्श करके मारा, किसी का स्तनाग्र चूस लिया, किसी को मुँह में हाथ डाला, किसी को जाके एक्सपांड हो गए अंदर, विस्तारित हो गए, उष्ण हो गए, ऐसे करके वो घोड़े के तो कहते हैं पेट तक हाथ डाला, पूरा यहाँ से लेकर अंदर पूरे पेट तक हाथ डाला, और हाथ को बढ़ाया तो घोड़ा मर गया। कौन था वो घोड़ा? केशी। तो फिर भी सीता, राधा रानी बोलती है कि बेबी आप दुष्ट हो, बहुत बहुत क्रूर हो, ऐसे मारते हो लोगों की कुछ है ही नहीं। तो फिर कहा कि ठीक है, अभी अगले अवतार में हम आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। उसी समय राधा रानी ने तय किया कि मैं भी आपके साथ में रहूंगी, क्योंकि आप बहुत मुझे छोड़कर लोगों को मार देते हो, आपके अंदर ही प्रवेश करूंगी। तो जब श्री कृष्ण के अंदर भाव रूप में राधा रानी ने प्रवेश किया तो वो गौरांग महाप्रभु बन गए, और गौरांग महाप्रभु ने कोई ना शस्त्र उठाया ना अस्त्र उठाया, क्या है वो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, इनके अस्त्र ही उनके भक्त हैं, अंग उपंग अस्त्र सब उनके भक्ति है, और वो किसी को नहीं मारते हैं लेकिन सबके अंदर की जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसको मार देते हैं। राक्षस को पूरा ही मार देते थे वो, पहले प्रवृत्ति के साथ मार देते थे, लेकिन इस जन्म में क्योंकि राधा रानी उनके अंदर ही बैठी हुई है तो ये कुछ नहीं कर सकते, केवल कृपा के सिवा कुछ नहीं कर सकते। राधा रानी का अस्तित्व उपस्थिति उनके हृदय में है, इसलिए उनके अंदर वो करुणा है। जो कृष्ण बोलते ना परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दशकृतम, मैं सबको मार देता हूँ, लेकिन महाप्रभु के अवतार में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दीन हीन याता चिलो हरिनाम उद्धारी लो तारा साक्षी जगाई मदाई, इतने पतित इतने पापी जो पहले तीन अवतारों में उन्होंने, उन तीन उनके अवतार हुए थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु वराह नरसिंह भगवान का अवतार लेकर वध कर दिया, उसके बाद रावण कुंभकर्ण राम के अवतार में जब वध कर दिया, इतना भयंकर घनघोर युद्ध किया, पूरा ब्रह्मांड जितने था राक्षस और देवता सब लोग देख रहे थे उस युद्ध को, रोंगटे खड़े होने वाले, सांस रोक कर देख रहे थे। फिर शिशुपाल दंतवक्र का वध किया, वही आए वापस जगाई मदाई बनकर। ऐसा कहते हैं कि इतना पाप करते थे कि पूरे विश्व में जितने मनुष्य थे, स्त्रियां थी, वो सब जीवन भर प्रयत्न पूर्वक जितना मैक्सिमम अधिक से अधिक पाप कर सकते हैं वो सारा मिलकर जो पाप है वो एक दिन में करते थे। उनका कोटा था इतनी आग लगाना घर पे, इतने औरतों पर रेप करना, इतना धन लूटना, ऐसा उनका एक कोटा था दिन का शेड्यूल दिनचर्या थी उनकी। ऐसे भक्तों को महाप्रभु ने तार दिया, एक आलिंगन दिया, सारे पाप छीन लिए, स्वयं काले हो गए, निस्तेज हो गए, और फिर उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया और भक्तों को बोला देखो अभी क्या होता है। एक तो आलिंगन के रूप में उनके सारे पाप छीन लिए, तो इतने हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशित गौरांग महाप्रभु, गौर वर्ण वाले, स्वर्ण वर्ण वाले, इतना तेज, अनंत कोटि सूर्यों का तेज था, वो सब नष्ट हो गया इतने पाप। फिर उन्होंने भक्तों को बुलाया और बोला चलो कीर्तन करो अभी देखो क्या होता है। जब उन्होंने कीर्तन किया भक्तों ने, उसमें जगाई मदाई भी जो भी शुद्ध भक्त बने हुए थे वो भी झूम झूम के नाच रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तत्काल प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई उनको। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो जो ब्लैक लेवल था ना वो धीरे धीरे उतर गया, ऐसे 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 ऐसे, फिर तेज आया, फिर नीचे नीचे उतर गया, जैसे आपने नीचे से टैप खोल लिया तो खाली हो गया, ऐसे पूरा तरह से पाप खाली हो गया और आसमान में एक ऐसे क्या कहते हैं सूक्ष्म बादल की तरह खड़ा हो गया वो जाके आसमान में। फिर महाप्रभु ने कीर्तन रुका, तो पुनः पूरा तेज प्राप्त किया, तो महाप्रभु जी ने घोषणा की, देख रहे हो ना उसको, वो जगाई मजाई के पाप हैं, वो उधर ही रहेंगे, जो व्यक्ति भविष्य में वैष्णवों का अपराध करेगा वो उनमें प्रवेश करेंगे। सावधानी को, सावधानी की चेतावनी दी उन्होंने, इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए और वैष्णव को देखना नहीं चाहिए कि सीनियर है, जूनियर है, कल का आया हुआ है, परसों का है, बहुत सीनियर है, हमारे महाराज है। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है उस व्यक्ति का अपराध नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आके करेंगे या लाखों गुना आपके ऊपर प्रभावित हो जाएंगे वो अपराध, छोटा सा अपराध भी। बहुत पावरफुल क्षेत्र है ये भूमि, ये रज बहुत शक्तिशाली है, कुछ भगवान के विषय में कुछ करोगे ना उसका भी लक्ष्य गुणित लाभ आपको देगा, ऐसा लगेगा अगर थोड़ा सा किया तो इतना सारा लाभ मिल रहा है आध्यात्मिक, वैसा ही कुछ गलत काम किया तो उसका भी वही भयंकर नुकसान होगा। इधर बहुत तीव्र भूमि है ये, यहाँ पर सब कुछ तीव्र है, प्रसाद पानी यहाँ का, हर एक स्थान, लीला कथा दर्शन सब पावरफुल है, एक एक करने से कार्य यहाँ पर हजारों लक्ष्य गुणित लाभ होता है। तो ऐसे भूमि में हम सबको राधा रानी ने बुलाया है, हमको शायद पता नहीं होगा लेकिन गुरु महाराज हर प्रवचन में बताते हैं कि सर्वोच्च पद्धति और सर्वोच्च प्रकार की सेवा जो है, सर्वोच्च सेवा वो राधा रानी हमको दे रही है, क्योंकि वो राधा रानी की सेवा, राधा रानी के प्रिय भक्तों की सेवा और राधा रानी के धाम में उनकी रज में हम कर रहे हैं, उसका भी एक इम्पोर्टेंस है। आप अमेरिका में करो या किसी गुंडागर्दी वाले जगह में करो उसका एक अलग परिणाम होता है, यहाँ पर हमको सर्वोच्च सेवा प्राप्त है हर प्रकार के भाव से। और राधा रानी सबको बुला रही है, क्या उनका कहना है कि आपको जो भी भगवान ने दिया है, कुछ कौशल्य दिया है, कुछ डिग्री दिया है, कुछ स्किल दिया है, कुछ वर्चस्व दिया है, किसी को वर्चस्व दिया है, अधिकार दिया है, इन्फ्लुएंस दिया है, वो सब राधा रानी की सेवा में लगाओ, वो आपको देने का प्रयोजन ही वो है कि आप उनको उन वर्चस्वों को, कौशल्यों को उनकी सेवा में लगाएं। हमारा कुछ नहीं इसमें, अगर वो वर्चस्व, कौशल्य, धन, संपत्ति, सौंदर्य, विद्या, बुद्धि अगर हम अपने भोग के लिए लगाएंगे तो कर्म के जाल में फंस जाएंगे, और जितने ज़्यादा ऐश्वर्य होगा उतना ज़्यादा भोग लेगा वो, जितना ज़्यादा विद्या होगी उतना ज़्यादा गर्व होगा, जितना ज़्यादा वर्चस्व होगा उतना और रूबा में घूमेगा। भौतिक वस्तुओं का ही ऐसा प्रभाव होता है, ज़्यादा जितना मिलता है उतना हम लोग मदमत्त हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं। लेकिन वही आपने राधा रानी के सेवा में लगाया, कृष्ण के सेवा में लगाया ये समझ बूझ कर, तो वो जो विकार उत्पन्न कर सकते वो नहीं होंगे, यहाँ तक कि विकार उत्पन्न नहीं होंगे लेकिन प्रेम भक्ति का उदय होगा हृदय में, जो जीवन का हमारा उद्देश्य है। इसलिए सब लोग इस विश्व में अपने कौशल्य का, डिग्री का, पढ़ाई का, बुद्धि का उपयोग स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने सारे कौशल्यों का उपयोग राधा और कृष्ण की सेवा में लगाता है। मानस देहो गेहो जो किचु मोर, जो भी मेरा है, जो भी कुछ मेरा है, मन है, शरीर है, विद्या है, मानस देहो गेहो, घर है, प्रॉपर्टी है, जो कि चूमोर अर्पिलुन अर्पिलुन तुआ पदे नंद किशोर, सब मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं, सब आपका ही है। संपदे विपदे, संपत्ति है कभी विपदा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं। सर्वस्व तुमार चरणे संपिया, पोड़ेची तुम्हार घरे, पोड़ेची हमार घरे भी नहीं बोल रहे, आपके घर में पड़ा हूं, सर्वस्व मेरा जो है वो संपन्न आपको मैंने अर्पण कर दिया है, संपिया यानी दे दिया आपको, और आपके घर में रहता हूं, आपका कुत्ता बनना चाहता हूं, आप बुलाएंगे दुम मिलाते आऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा कब आप मुझे बुलाएंगे सेवा के लिए, आपके घर में पड़ा रहूंगा। ये कौन बता रहे बताएं आपको, सर्वोच्च विद्या विभूषित, अंग्रेजों के समय पर सर्वोच्च पद पर विराजमान ठाकुर भक्ति विनोद महाराज, कुछ कमी नहीं थी उनको, कोई भिखारी नहीं थे वो, मैं कुत्ता बन के रहूंगा ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्या अर्पण करेंगे, तो ऐसे बनना लगता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं है, वो भगवान का भक्त बन जाता है ऐसा आपको लगता है, लेकिन सब कुछ चरम सीमा पर होते हुए भी उन्होंने अपने आप को इस भाव में रखा, यही उनका यश है। हमारे पास तो उनके इतनी विद्या, उनके इतना वर्चस्व, उनके इतनी कला कुछ भी नहीं है, जो भी है उन्होंने जो भी है जो कुछ मोर अर्पण किया, हमारे पास भी जो कि चुमोर वो भी अर्पण करना चाहिए, भिखारे को अपने 2 रुपए अर्पण करने चाहिए और धनी लोगों को अपने अब्जो की संपत्ति भी अर्पण करनी चाहिए, क्योंकि 2 रुपए भी भगवान के और अब्जो भी संपत्ति भगवान की है। कितना हम उनकी सेवा में लगाते हैं अपनी बुद्धि को, कौशल्य को, विद्या को, धन को, उतने हम जीवन में यशस्वी हो जाते हैं और माया से बच भी जाते हैं। इसलिए आपके पास जो भी कौशल्य है कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण को अर्पण करो, राधा रानी को धन्यवाद करो कि ये सब बिना जाने उन्होंने हमको बुला लिया इधर और हमसे सर्वोच्च सेवा करा ली। देखो आप, वी डोंट इवन नो वेयर व्हाट वी आर, वेयर वी हैव कम, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, लेकिन फिर भी उन्होंने बुला लिया, कृपा है उनकी। कोई मत समझना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास बहुत पोजीशन है, पावर है, अथॉरिटी है, धन है, बहुत विद्या है, बुद्धि है, इसलिए मैं जो यहाँ पर सेवा है कुछ नहीं, एक ऐसे टिचकी मारेंगे तो जन्म भर के लिए ब्रज के बाहर आओगे, कितना भी प्रयत्न करो वापस अंदर नहीं आ सकते, 50 कष्ट आएंगे अंदर आने के लिए, जितना प्रयास करो उतना। कृपा है, केवल कृपा, कोई योग्यता नहीं है, केवल कृपा से हम लोग यहाँ पर आए हैं, तो जब कृपा से ही कोई आता है ना तो वो प्रचंड धन्यवाद की भावना में होता है, योग्यता है मेरी इसलिए आ गया तो उतना धन्यवाद, अरे मैं तो डॉक्टर हूँ, मैंने बुलाया गया, मैं आया हूँ। लेकिन अगर ये भाव होगा आपका कि मैं केवल कृपा से यहाँ पर आया हूँ, तो आपके धन्यवाद की भावना बढ़ती जाएगी, कृतज्ञता की भावना बढ़ती जाएगी, और वही हमको यहाँ पर आके परवरिश करनी है, कृतज्ञता की भावना, हर समय हर साल आएंगे और कृतज्ञ होना है कि भाई मेरा कुछ भी नहीं है, और समझ में आएगा बाद में आपको, जब बूढ़े हो जाएंगे ना, सब कुछ जो लगता है आपके पास है वो सब धीरे धीरे आपको छोड़ के जाएगा, आपका यौवन, आपका सौंदर्य, आपके काले बाल, आपका धन संपत्ति, आपकी विद्या, आपकी स्मृति, आपका पोजीशन, एक दिन रिटायर हो जाएंगे आप, कहीं के नहीं रहेंगे आप। अगर हम इच्छा से भगवान को अपने आप को अर्पण नहीं करेंगे तो काल के रूप में वही भगवान आपको जो कुछ कुछ दिया है आपको वो सब कुछ छीन लेंगे, तो वैसे भी आपको देना है, ऐसे भी देना है, यू हैव नो चॉइस, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो बुद्धिमानी यह है कि वो सब कुछ को खोना ही है तो इच्छा से ही भगवान को दे दो, वो उससे आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी और भगवान का प्रेम कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। प्रार्थना करो, जिन जिन को अपने कौशल्य को और क्षमता को, धन को, परिवार को, जो भी कुछ अपना है उनको भगवान को अर्पण करने में कष्ट है, ये समय है यहाँ पर बरसाने में। प्रार्थना करो कि हमें, हमारे सभी पार्षदों को कृपा करो, राधा रानी बार बार बुलाओ, अपनी सेवा में रखो, दूर भी जाएंगे आपसे अपने परिवार में तो भी आपकी स्मृति बनी रहे, की याद बनी रहे, आपकी सेवा की तड़प बनी रहे, यहाँ आने की तड़प बनी रहे, यहाँ से जुड़ने की जो इच्छा है वो बनी रहे। अभी मैं थोड़ा देर हो रही है, कोई बात नहीं, मैं छोटी सी एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। हमारे ना यहाँ पर एक बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं, यहाँ पर बहुत कृपा है भगवान की, राधा रानी की। तो वो मित्र जो है ना, वो बहुत क्वालिफाइड वकील ब्रिजवासी है, और 32 साल उन्होंने लॉ प्रैक्टिस किया हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी जो भूमि है ना, जो पहले आधा हिस्सा हमने लिया था 2.5 एकड़ 4 बीघा, उसकी रजिस्ट्री करने के लिए उन्होंने पूरा लीगल सहायता की थी, पूरे पेपर छान मार के पूरा एग्रीमेंट बनवा के सब कुछ किया था, फ्री सर्विस निरपेक्ष। तो वो अगले वाले में भी उन्होंने मदद की। तो ऐसे वो उनका एक स्कूल है मोंटेसरी से लेकर 12th तक, 478 स्टूडेंट्स, रणवारी गांव में, बहुत दूर गांव में। वो संपन्न है वैसे, मतलब बहुत अमीर धनी नहीं, लेकिन अच्छे हैं, कोई लालच नहीं उनको किस चीज़ का। तो उनका 2009 में उनकी माता का आंखों का ऑपरेशन हो गया, होने वाला था, मतलब मोतियाबिंद कहीं, तो भी हमारा परिचय नहीं था उनका, तो कहीं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा मोतियाबिंद है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैया भी, मैया जो है ना बहुत उच्च प्रकार की, उच्च श्रेणी की वैष्णवी ब्रजवासी माता है वो, तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो माता जी अपने पुत्र को कहती है, ध्यान से सुनो, उसमें आपको समझ में आएगा कि ब्रजवासियों का गौरव क्या होता है, ब्रजवासी क्या होते हैं, वो समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि मैं तेरे पैसे से ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, क्योंकि तेरे पैसे से ऑपरेशन कराऊंगी तो कब मेरी आंख ठीक हो जाएगी मुझे पता नहीं। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वकील लोग क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, है ना, उनको अच्छे लोग भी आते हैं, गुंडे भी आते हैं, तो जो भी अपना अशील बन के आता है उसको संभालना, बचाना, छुड़ाना यही काम होता है। तो झूठ मूठ का काम भी करना पड़ता है, तर्क भी करना पड़ता है, बहुत सारी दिमाग लड़ाना पड़ता है, और किसी गुंडे को, कट्टर गुंडे को आपने अगर बचा लिया, वो उसके पैसे फीस लेंगे आप, उसकी रोटी खाएंगे, तो बोले तेरे पैसे से ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं मेरे पैसे जोड़ूंगी। और मैया ने अपने पैसे से अपना ऑपरेशन किया। उस दिन हमारे जो मित्र हैं, वकील मित्र, उनको लगा, करे अगर मैं मेरे पैसे से, मेरे व्यवसाय से पैसा, वो कमाया हुआ पैसे से मेरी माता का इलाज नहीं कर सकता तो किस काम का ये प्रोफेशन। तुरंत उन्होंने रिजाइन कर दिया वहां से। 2-4 दिन के बाद ऑपरेशन हो गया, मैया घर पे हैं। अब पूछ रहे, बेटा ऑफिस नहीं जा रहे हो, कोर्ट नहीं जा रहे हो? नहीं मैया, मैंने छोड़ दिया उसको, अभी 2009 में पूरा कोर्ट कचहरी छोड़ दिया। अभी आप बताइए, ये ज्ञान हमारे ब्रज के तथा कथित अनपढ़ माता जी को भी है कि धन जैसा कमाते हैं उसके पीछे जो भाव होता है, जो जिस प्रकार का कार्य करके धन कमाते हैं, उसका परिणाम अर्जित धन में भी होता है, और उस धन से आप रोटी खाते हो, कपड़ा पहनते हो, जो भी करते हो, उससे आपकी मति भ्रष्ट या पवित्र हो सकती है। ये हमारी संस्कृति है, ये कर्म का ज्ञान है ना, वो यहाँ के रिक्शा वालों को भी है, जो मुंबई के बड़े बड़े PhD साइंटिस्ट, गीता में PhD किया, उनको भी नहीं है। ये कैसे विदेशी साइंटिस्ट है जो भगवत गीता में PhD किया है उन्होंने, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं उनको, हर एक श्लोक याद है, पूरे विश्लेषण के साथ बताएंगे आपको, लेकिन मति जो है ना वो कृष्ण मति नहीं है। और हमारे देश की ब्रजवासी माता जी जो है बिल्कुल अंगूठा छाप है, पूरा ज्ञान है उनको जो आवश्यक है आत्मा के स्तर पर। उन्होंने गदगद होकर मुझे कहानी बताई कल कि ये मेरे जीवन की छोटी सी कहानी है, ये इतना प्रभावित कर गई कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे कहा, उसी दिन से दुकान बंद। फिर बोली, देखो और मैया बोली, अच्छा तू जाना बंद कर दिया, जितना धन कमाया है ना जाओ जनता की सेवा में लगाओ, फिर तुम शुद्ध हो जाओगे। तो उन्होंने फिर जो उनका उनका पूंजी था ना, पूंजी कमाया हुआ, उन्होंने रणवारी गांव में जिस जगह पर जगन्नाथ दास बाबा जी ने भजन किया था, वहाँ एक उन्होंने अपने पूरे अपने खर्चे से मंदिर बनाया और राधा गिरधारी जी का विग्रह स्थापन किया वहाँ पर। जगन्नाथ बाबा जी ने ब्रज में बहुत साल भजन किया, अभी उसमें नहीं घुसे की कहानी में। फिर कुछ घटना ऐसी हुई कि वहाँ से निकल गए वो और मायापुर चले गए, और तब से मायापुर में रहे अंतिम समय तक, क्योंकि ब्रज कैसा है उसका एक प्रदर्शन उनको हुआ वहाँ पर कि ब्रज में अपराध करने से क्या हो सकता है। उन्होंने एक बाबा के जीवन में देखा, तुरंत जगन्नाथ बाबा जी वहाँ से निकल गए। उस स्थान पर उन्होंने अभी बड़ा मंदिर बनाया है, और एक वहाँ पर रसोई बनाई है जो कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, उनके तिरुभाव तिथि में यहाँ पर गांव 10,000 लोगों को भोजन कराते हैं, अपने खर्चे से पूरा किचन बनाया है। जिस एक प्रकार से जितना कमाया था वो सब यहाँ पर आश्रम बनाया, वहाँ गुरु जी के लिए बनाया, वहाँ पर संकीर्तन मंडली के लिए एक जगह बनाई, और आज भी वो कुछ नहीं करते हैं लेकिन स्कूल चलाते हैं, अध्यापन करते हैं, उसमें कोई चीटिंग नहीं है, बच्चों को विद्या पढ़ा रहे हैं। साथ में ब्रज में तो हर स्कूल में कितने सारे श्लोक पढ़ाते हैं, ब्रज की रसिया पढ़ाते हैं, उत्सव के अनुसार रसिया पढ़ाते हैं। यहाँ का विद्यालय अद्भुत है, हमारी बेटी यहाँ पर 2 साल पढ़ी है, छोटी सी, अभी भी वो भजन उसको याद है जो स्कूल में सीखी थी उसने। क्या बनाया था भजन था वो, कन्हैया जी को अच्छी लगी, राधा रानी का ऐसा कुछ वर्णन करके कन्हैया जी को अच्छी लगी, ऐसे करते करके उसको सिखाते दिखाना। राधा रानी बन ठन के चली, कन्हैया जी को अच्छी लगी, उनकी नथनी पहनी उनको अच्छी लगी, ऐसे भजन बचपन में सुनाते थे। ये हमारा कल्चर है, प्लीज अंडरस्टैंड, गलत तरीके से जीवन जीना हमारा कल्चर नहीं है। कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे पानी पीना है, कैसे वस्त्र पहना है, बालों का श्रृंगार कैसे करना है, किस प्रकार से धन कमाना है, कितना तक मेहनत करनी है, 12-12, 15 घंटा मेहनत नहीं करनी है, भजन का समय होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है, ये ब्रज संस्कृति जो है ना बहुत ज़रूरी है। ये सब बार बार हम लोग अपने कैंप में क्यों कहते हैं कि ये मत पहनो, वैसा मत पहनो, क्योंकि भक्त होने के पहले ना भक्त की तरह कम से कम वस्त्र पहनना और अपने आप को रखना जरूरी है। इसको कहते हैं बाह्य संस्कृति, एक्सटर्नल बॉडीली कल्चर भी जरूरी है। अगर मुझे आपके प्रति आदर है तो मन में भी कर सकता हूँ, लेकिन हम आदर वो दंडवत करके व्यक्त करते हैं। एक शरीर की गतिविधि होती है तो अपने आप आदर निर्माण होता है, सब मन में प्रणाम करने से आदर नहीं होता है। किसी को पेट में दर्द है, कोई बीमार है तो बात अलग है, लेकिन जब हम झुक के प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, तो हर एक मुद्रा में, हर एक शरीर की क्रिया में एक आध्यात्मिक या भौतिक शक्ति होती है। इसमें मैंने आपको ऐसे उंगली दिखाई तो इसको एक अलग शक्ति है, ऐसे बोल के बोल रहा हूँ तो दूसरी शक्ति है, वही उंगली है लेकिन भाव बदल गया तो उसका परिणाम डिफरेंट है। आप बोलेंगे पहले उंगली नीचे करो, उंगली मत दिखाओ मुझे, ऐसा क्या होगा, उंगली में थोड़ी आग निकल रही है, लेकिन आग से भी अधिक भयंकर चीज निकल रही है, उसको नीचे करो पहले। इज इट नॉट ट्रू? तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा शरीर में कैसे भी वस्त्र पहनेंगे तो भक्तिभाव बना रहेगा? नॉट पॉसिबल। उसके लिए भक्ति के अनुकूल वस्त्र पहनने पड़ेंगे आपको। शरीर का नुमाइश करेंगे तो भक्तिभाव कैसे बना रहेगा? शरीर का ही भाव बना रहेगा कि मैं शरीर हूँ, अहम ममेति, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, कितना सुंदर हूँ, देखो मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ, सब लोग देख रहे हैं मुझे, सब आकर्षित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो शरीर का भाव बढ़ रहा है कि आत्मा का भाव बढ़ रहा है? इसलिए बार बार कहते हैं हमारे कैंप में ये वस्त्र पहनना कैसे है ये भी जरूरी है समझना, कैसे व्यवहार करना है, खास करके स्त्री पुरुषों को कैसे व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, अगर पैंट शर्ट पहनना है तो भी कैसे पहनने हैं, टाइट बॉडीली फिटिंग नहीं पहनने हैं। बाल स्त्रियों के एक उनके स्त्रीलिंग के एक आकर्षक वस्तु है, इसलिए हमारे संस्कृति में तो बाल दिखाई नहीं पड़ते थे किसी के, हमेशा पल्लू धारण करके उसको, वही सौंदर्य है। जो कीमती वस्तु हम छुपाए रखते हैं उसका मूल्य बनाए रहता है, बहुत मूल्यवान वस्तु जन्म में नुमाइश की उसकी तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। अगर आपका सौंदर्य छुपा हुआ है पुरुष का या स्त्री का तो कुतूहल बना रहेगा कि कितना सौंदर्य है, सब खोल दिया और दिखा दिया तो फिर क्या कुतूहल है, दूसरी जगह छुपा हुआ देखेंगे ये कब खुलेगा। तो शरीर जो है हमारा कितना भी सुंदर होगा नुमाइश करने के लिए नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता करने के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मेरे विग्रह के सामने, यानी राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गौर नित्य, इन सारे विग्रहों के सामने जब कोई प्रेम भाव से नृत्य करता है उनके आनंद के लिए, कहते हैं वो ठाकुर जी को अपने वश में कर लेता है, ठाकुर जी उसके नियंत्रण में आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है चैतन्य चरितामृत का, जिस भी विग्रह के सामने आप नृत्य कर रहे हैं उसका भाव क्या होना चाहिए कि मैं कितना सुंदर नृत्य कर रहा हूँ, कितने लोग देख रहे हैं, देखो सेंटर में मैं नाच कर रहा हूँ, सब जनता रुक के मुझे देख रही है, देखो इतना बढ़िया नृत्य कर रहा हूँ मैं, ये भाव से नहीं, मेरे शरीर की हर गतिविधि हर मूवमेंट आपकी खुशी के लिए है, आपके लिए शरीर को मैं गतिविधि में अर्पण कर रहा हूँ। ये भाव से कीर्तन करेंगे तो वो ठाकुर जी आपके वश में हो जाएंगे। वैसे ही वो आत्मभाव देह भाव से अगर गतिविधि करेंगे तो वो कैसे अपने हो जाएंगे, फिर हम और काम वासना में और भोग में लिप्त हो जाएंगे। तो ये सब भाव बनाने के लिए कम से कम शुरुआत में कपड़े खाना पीना का कल्चर होना जरूरी है। प्रसाद मत फेंको, क्यों कहते हैं, प्रसाद साक्षात भगवान है और वो बरसाने में खाएंगे तो उसमें अनंत शक्ति है, रस भरा हुआ है भक्ति का, एक कण भी वेस्ट मत करो, ज़्यादा मत खाओ कम मत खाओ। ज़्यादा प्रसाद भी खाने से, भाव से खाने से भी आदमी बीमार पड़ सकता है, तो मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मुझे आपकी सेवा करनी है पर्याप्त मात्रा में, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। सोना भी है तो ज़्यादा भी सोना नहीं कम भी सोना नहीं, सेवा में लगना है, बाकी समय विश्राम करना है, भगवान नाम का जप करना है, कीर्तन में आके बैठना है। ये सब जो नियम बनाए गए हैं ये दुष्टता के कारण नहीं बनाए गए, कि सबको ऐसा पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं यहाँ से किसी को, हमारे अंडर आएंगे तो ऐसे पकड़ के, ये भाव नहीं है। आपको पूरी की पूरी कृपा आपकी चेतना के अनुसार आपको मिलनी चाहिए, इसलिए नियम बना कर रखें। तो बोलेंगे कुछ भी पहनो, स्त्री पुरुष फ्री में घूमो, फ्री में अपना संबंध रिलेशनशिप रखो, कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो मौज करो, थोड़ी बहुत सेवा कर लो, बरसाने में आए हो, इससे लाभ नहीं होगा आपको। लाभ तब होगा जब हमारे शारीरिक कल्चर से हमारी एक चेतना बनेगी, हमारा एक वातावरण बनेगा। और अगर हम वातावरण निर्माण नहीं करेंगे तो जो लोग नए आ रहे हैं वो भी वैसा ही करेंगे जैसे पुराने लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आए हैं वो जो पुराने वाले से आ रहे हैं, बहुत बार आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो देख के वैसा ही करेंगे, और पुराने वाला एक अच्छा आदर्श उत्पन्न खड़ा करेंगे तो नए वाले अपने आप उसको पालन करेंगे। तो क्या होगा, हमारी बनाई मेहनत से बनाई हुई संस्कृति जो है इस कैंप की वो बरसों तक चलती रहेगी, 100 साल के बाद में भी यही कल्चर, यही भाव, सेवा भाव, काम चोरी नहीं होना, समय पर काम करना, समय पर उपस्थित रहना, हृदय से सेवा करना, राधा रानी के हर औजार की देखभाल करना, जिम्मेदारी से उसकी नुकसान ना हो, छोड़ के मत चले जाना, पेपर को ज़्यादा वेस्ट मत करना, पर्याप्त मात्रा में यूज़ करना, क्योंकि राधा रानी की प्रॉपर्टी है, किसी ने दान दिया कोई यूज़ कर रहा है ऐसे नहीं है, हमारे जिम्मे दिए, चाहे ब्लड प्रेशर का ऑपरेटस हो, चाहे एक कद्दू हो, एक्स्ट्रा क्यों डालना है इसको। ये भावना से अगर हम करेंगे, ये आँख ब्रजवासी की है, एक साधारण आँख नहीं है, मैं जो सीख रहा हूँ उसका प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, ये जो प्रैक्टिस कर चुका हूँ, कौशल्य आ गया है, वो कौशल्य अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नो प्रैक्टिस इन द कैंप, प्रार्थना पूर्वक वैष्णव प्रणाम कहते हुए और सर्जरी करनी है, तो पता चलेगा कि राधा रानी के भक्त जो यहाँ पर आ रहे हैं, इतनी मूल्यवान आंखों को हमको स्पर्श करने को मिल रहा है, जो आगे जाकर ठाकुर जी को देखने वाली है, जिसके पटल में रेटिना में केवल कृष्ण आने वाले हैं सदैव दर्शन के माध्यम से। ये ऑपरेशन करना, और मैं फास्ट सर्जन हूँ, मैं बहुत जल्दी करता हूँ, मैं आता हूँ तो ज़्यादा स्पीड होता है, ये भाव से करेंगे, और मैं राधा रानी का सेवक हूँ, राधा रानी अपने प्रिय भक्तों की मूल्यवान आँख मेरे हाथ में दे रही है दर्शन कराने के लिए, तो अंतर है ना उसके अंदर, आपके हाथों में आध्यात्मिक बल आएगा उस समय, आपका कौशल्य घर पे, ये कौशल्य जो है ना वो दिव्य कौशल्य है, तो राधा रानी के भक्तों की आंखों पे आपको सेवा करने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपको यही विनती है, जब हम किसी को टोकते हैं बताते हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि पूरी राधा रानी की कृपा आप पर बरसे, आपका मन यहाँ वहाँ ना भटके, पूरे फोकस रहे हम लोग, और हर साल बढ़ते हुए चेतना में यहाँ पर आए। पिछले साल में ये मूड में था, अभी मैं और आगे समर्पित भाव से करूंगा, जो भी नियम है जो बताया गया वो करूंगा, जूझूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, पूरे नियम से चलूंगा, पूरा लाभ लूंगा, तब राधा रानी बार बार बुलाएगी, नहीं तो क्यों बुलाएगी। तो मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ, हर एक बनाए गए नियम के पीछे एक रहस्य है यहाँ पर, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक ही बार आने से सब कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जरूर समझ में आएगा। हम समझाने का प्रयास भी करते रहते हैं लेकिन सब याद भी नहीं रहेगा आपको, लेकिन आइए उसको पालन कीजिए और उस भाव में सेवा कीजिए, आपको अंदर से राधा रानी आपको हृदय को छू रही है कृपा से, ऐसा अनुभव आपको होगा, तो आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, और फिर आपको आप राधा रानी के हो जाएंगे, फिर यहाँ रहो या वहाँ रहो सदैव उसी के रहो। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है एकाध किसी का, कई आज कई विषयों पर चर्चा किया हमने, सार उसका यही है, कि राधा रानी की असीम कृपा के कारण हम लोग यहाँ पर हैं और अभी जाने का समय हो गया है। निश्चय कीजिए, संकल्प कीजिए, प्रणाम कीजिए, क्षमा मांगिए कुछ अपराध हो गया तो, लेकिन उनको कहिए कि हम और अच्छी सेवा करेंगे, और अच्छे भाव से करेंगे, और अच्छे व्यवहार से करेंगे, और अच्छे लगन से करेंगे, और अच्छे समर्पण से करेंगे। और अब है ना, तुम गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, तुम क्षमा करो अपराध लाडली श्री राधे। यही हमको कहना है, हमारे से अनंत अपराध होते रहते जाने अनजाने में। प्रार्थना करो कि वो आपको क्षमा करें, अपना बनाए रखें, व्यवहार से सेवा नहीं करें, दिल से सेवा करें। कितना पगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, चापलूसी चालाकी छोड़ के, चाहे ब्रजवासी हो या बाहर से आए हुए सेवा कर रहे हो, सब लोग मिलकर राधा रानी की सेवा में हैं, और हृदय से सेवा करो, तब वो महारानी आपने हमको अपनाएगी। कोई प्रश्न किसी का है? एनीबडी हैज क्वेश्चन? ओके, जय जय श्री राधे श्याम।